जय जिगरी दोस्तों, नमस्कार। AFEIS के आज 2 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आप सबसे रिवीजन करने में सतर्कता इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दो तीन जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ लोन लिया है, राइट? और उसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो खासकर मेघालय में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको उस डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए, उसका आधुनिकीकरण करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% बिजली पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन कभी बाधा आ जाती, कुछ मीटर रीडिंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या इंडस्ट्री वगैरह को जितनी बिजली चाहिए उस तरीके से नहीं दी जा रही है, तो इन सब में सुधार किया जाएगा। तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया गया है। मेरा पर्पज़ यहाँ लोन के बारे में या मेघालय के बारे में बताने से नहीं है, मेरा पर्पज़ यहाँ एशियन डेवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने से है। दोस्तों, आपके सिलेबस में बकायदे दिया हुआ है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए, और चूंकि आप एशिया में रह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी बातें जाननी चाहिए। मैंने जोर दिया है थोड़ी सी बातें। अब आप ऐसा न करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप ढेर सारी बातें पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है। अगर आप IAS में आ गए तो हो सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में कभी आपकी पोस्टिंग हो जाए, उस समय जान लीजिएगा। अभी तो बस आप थोड़ी सी बातें जान लीजिए कि यह है क्या। देखिए, जब आप ये सुनते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि यह बैंक एक ऐसा बैंक है जो एशिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचता होगा, आप बिल्कुल सही हैं। इसका जो क्षेत्र है, या यूं कह लीजिए कि जिसके विकास के लिए यह बैंक बना है, वो एशिया प्लस पैसिफिक एरिया है, एशिया महाद्वीप प्लस प्रशांत क्षेत्र। जब हम प्रशांत क्षेत्र कहते हैं तो प्रशांत क्षेत्र के बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं, खासकर चीन के संदर्भ में प्रशांत क्षेत्र की बात होती ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र। तो मैं प्रशांत क्षेत्र क्या है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप भी थोड़ी सी मेहनत करना अब शुरू करें तो इस क्षेत्र के विकास के बारे में। और चूंकि बैंक है तो डेफिनेटली उसका मूल उद्देश्य तो आर्थिक विकास करना है, लेकिन आजकल कोई भी आर्थिक विकास अब सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रह गया है, है ना। उसमें सामाजिक विकास आ गया, जिसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, है ना, समावेशी विकास करते हैं। ये बैंक 1966 में स्थापित हुआ और भारत उसी समय से इसका सदस्य है। हमने लिया ना लोन, तो स्वाभाविक है कि हम सदस्य होंगे तभी लोन ले रहे हैं। फिलीपींस में जो मनीला है वहां इसका हेडक्वार्टर है। इस बैंक की खासियत यह है कि देखिए, जब हम कहते हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात क्लिक कर रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग कहां रहते हैं तो आपके दिमाग में अफ्रीका महाद्वीप आ सकता है, लेकिन जो संख्या है वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। अफ्रीका में उतनी पॉपुलेशन शायद इस एरिया को मिला करके नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा गरीब जो आबादी वाला एरिया है उनको कैटर करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कहा जाता है। अब आंकड़ों के रूप में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में दोस्तों नहीं हूं, तो आप कह लीजिए कि ये गरीबों का जो एक प्रकार से क्षेत्रीय बैंक है, मजाक के तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। तो ये इस देश के जो लोग हैं, जो इसके सदस्य हैं, लोग नहीं कहना चाहिए, इस देश के जो राष्ट्र हैं, लोगों को नहीं राष्ट्रों को ये लोन देता है, तो उनको बकायदे लोन देगा, ग्रांट देगा, तकनीकी सहायता देगा, एडवाइजरी देगा, ताकि वो देश अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके। जब हम इसके सदस्यों के बारे में सोचते हैं, और मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि इसके सदस्य किस महाद्वीप के लोग होंगे, तो कॉमन सेंस के आधार पर आप तुरंत कहेंगे कि एशिया महाद्वीप के, क्योंकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्य शुरुआत में तो इसके 31 थे जब ये बैंक बना था, लेकिन अब इसकी सदस्य संख्या बढ़कर के 68 के करीब हो गई है, और इसमें जो 49 कंट्रीज हैं वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, और जो रिमेनिंग 19 हैं वो इससे बाहर के हैं। तो चलिए एशिया के कौन कौन से देश होंगे, प्रशांत क्षेत्र के कौन कौन से देश होंगे, इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। भारत होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, यानी ये जो फिर आप देखिए कि जो रशिया से अलग हो गए जो देश हैं जिसमें ताजिकिस्तान ये सब आते हैं ना, ये सब होंगे। कोरिया भी हो सकता है, चीन भी है, जापान भी होगा, ये जो एशिया के जो देश हैं, मनीला आपके फिलीपींस तो होगा ही होगा, सिंगापुर होगा, मलेशिया होगा। इसी बहाने आपको पता लग जाएगा कि अच्छा एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, लेकिन जो बाहर के हैं वो कौन है। दोस्तों मैं सदस्यों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, यहां जानबूझकर के कर रहा हूं, और इसलिए क्योंकि इस बार के प्री एग्जामिनेशन में आपको पता है कि G20 के सदस्य देशों के बारे में पूछा था नाम, है ना, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में कर रहा हूं। बस एक बार आपको सुनना भर है, यही आपके दिमाग में अगर अटक गया तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जवाब ले लेंगे, इनको कोई रटने की बात नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सदस्य कौन से देश हो सकते हैं, आपके दिमाग में उसका एक बेसिक जो एक फार्मूला होता है वो फार्मूला बैठ जाए। तो बाहर के जो देश हैं वो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, इसका सदस्य, ब्रिटेन इसका सदस्य है, स्विट्जरलैंड है तो स्वीडन भी है, स्पेन भी है, पुर्तगाल भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, डेनमार्क भी है, फिनलैंड है, कनाडा है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये भी इसके सदस्य हैं। तो बस एक बार आपने सुन लिया बस, तो अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि चूंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो सिर्फ एशिया महाद्वीप के ही राष्ट्र इसके सदस्य हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों आपने एक खबर आज अखबारों में पढ़ी होगी, केवल खबर के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, लगभग 50% मतदान हुआ, तो आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ठीक ठाक मतदान हुआ है। एक खबर आपने और भी आज अखबारों में पढ़ी होगी कि जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस का जो कलेक्शन है था पिछले महीने का, वो काफी अच्छा रहा, 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन हुआ है। तो ये शो कर रहा है कि चीजों की बिक्री बढ़ी है, यानी कि बिक्री बढ़ी है कहने का मतलब है कि चीजों की डिमांड बढ़ी है, तो एक अच्छा एक सिनेरियो, एक संभावना दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे अब इस कोरोना के संकट से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उबर रही है। बस इस बात को आपके सामने रखने के लिए ये दो न्यूज मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताई है कि ये तथ्य आपके दिमाग में दर्ज होने चाहिए। इसका मतलब है कि आप बकायदे अपने देश और विदेश की घटनाओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उनके बारे में आप सतर्क भी हैं। अब आइए मैं मुख्य विषय पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं और रिवीजन करने में सतर्कता मैंने ये शीर्षक बताया। दोस्तों जब प्री एग्जाम खत्म हुए तो उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद से मेरे पास कुछ मेल आने लगे और उस मेल में स्टूडेंट ने एक अलग तरह की समस्या की चर्चा की। चलिए एक दो मेल तो शुरू में थे तो मैंने थोड़ी सी उसको आप यूं कह लीजिए कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई मेल आए तो मुझे लगा कि नहीं इस पर बात की जानी चाहिए। देखिए आप लोगों के मेल मुझे लगातार निर्देशित करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, इसलिए मेल लिखने में आप लोग कतई कोताही न करें। हाँ लेकिन जरा सा मेल थोड़ा सा छोटा अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबे बिल्कुल जैसे कि कोई निबंध लिखे जाते हैं, वो थोड़े से अव्यवहारिक हो जाते हैं। अपनी बात को संक्षिप्त में कहने की आदत डाली और ये सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है। खैर उसमें ये बात कही गई कि सर इस बार के प्री में पेपर अच्छा नहीं बना तो हमारा नहीं होगा। बाद में ये भी कहा गया कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और बोले अब जब मैं दोबारा तैयारी कर रहा हूँ, जब उन्हीं को पढ़ रहा हूँ, अब वही फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझे आता है, और जब ये लगने लगता है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैं पढ़ चुका हूं, इसके बारे में मुझे मालूम है, तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो अब हम क्या करें। यानी कि अब वो रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करने में उन्हें ये दिक्कत आ रही है। तो आइए इस समस्या पर थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए आपको एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए और ये वैज्ञानिक सत्य भी है, आपको किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको आ रहा होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता। इसका मतलब है कि आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है, लेकिन सच बात यह है कि आपको आ नहीं रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि मुझे आ रहा है? इसलिए कि आपने उसे केवल सतही तौर पर पढ़ा है, सतही तौर पर समझा है, अगर समझा है तो, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा रट लिया है। लेकिन आप उसकी जो बेसिक्स होते हैं, उसकी जो वास्तव में जो चाबी होती है, जो कुंजी होती है, उसे नहीं समझ पाए हैं, वह आपकी पकड़ में नहीं आया है। और सिविल सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक्स की पकड़ को ही चेक करने की रिक्वायरमेंट है। कल मैंने आप लोगों से बात की थी जीडीपी के बारे में, और जीडीपी में मैंने उसी बेसिक्स का उल्लेख किया था कि सामान्य तौर पर तो जब आप जीडीपी की परिभाषा पढ़ेंगे, याद कर लिया तो ठीक है, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो हाँ मैंने तो पढ़ लिया, मुझे तो समझ में आ गया, यही परिभाषा मुझे याद है। तो सिविल सर्विस प्री में आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी कि निम्न में से कौन सी परिभाषा जीडीपी की सही परिभाषा है। उस परिभाषा को आधार बना करके वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि उस परिभाषा पर आपकी पकड़ है कि नहीं, आपने उसे समझा है या नहीं समझा है। आप एक काम कीजिए खुद की टेस्टिंग के लिए, मुझे लगता है कि आपको यह करना भी चाहिए। आपके घर में डेफिनेटली कोई ना कोई चित्र टंगा होगा या कोई फ्रेम में तस्वीर लगी हुई होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और अगर मैं पूछूं कि वो किसकी तस्वीर लगी है तो आप बिल्कुल बता देंगे कि इसकी तस्वीर है, चाहे वो किसी व्यक्ति की तस्वीर हो या कोई प्राकृतिक दृश्य हो, कोई भी हो, किसी भगवान की मूर्ति तस्वीर लगी हो, आप बता देंगे कि ये उनकी भगवान कृष्ण की है या सरस्वती देवी की है या फलाने की है, आप बता देंगे। आप एक काम कीजिए बस, और आप कर लीजिए प्लीज, कि आप उसके सामने इत्मीनान से जाकर के खड़े हो जाइए और उसको ध्यान से देखना शुरू कीजिए। याद रखिए कि अभी तक आपने उसे ध्यान से नहीं देखा है, आपने दूर से देखा है और समझ गए कि अच्छा ये तो कृष्ण जी हैं, बस खत्म हो गई बात। अब ध्यान से देखिए और एक कोने से देखना शुरू कीजिए और उस तस्वीर के सामने आप आधा घंटा लगाइए। चलिए आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं, आप 15 मिनट तो लगा ही सकते हैं, 15 मिनट लगाइए और बारीकी के साथ देखना शुरू कीजिए और फिर मुझे लिख करके बताइएगा कि उसमें से कितनी चीजें आपको पहली बार देखने को मिली हैं। इसका मतलब है कि आपने मोटे तौर पर तो ये देख लिया था कि ये तस्वीर इनकी है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि अगर वो कृष्ण जी की तस्वीर थी तो उनके मोर, उनके सिर पर जो मोर का पंख था उसमें कौन सा कलर था, उन्होंने किस कलर के ये पहन रखे थे, उनकी बांसुरी की झालर कितनी लंबी थी, बांसुरी का कलर क्या था, और भी जो आसपास के जो प्राकृतिक दृश्य हैं, वहां अगर फूल थे तो किसके फूल थे, किस रंग के थे, ये आपने अभी तक देखा ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपने तस्वीर तो देखी, तस्वीर के बारे में आप जानते भी हैं, लेकिन तस्वीर को पूरी तरह से नहीं देखी, और चूंकि पूरी तरह से आपने तस्वीर नहीं देखी तो पूरी तरह से जानते भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप केवल इस अभ्यास को कर लें तो शायद आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि नहीं, जब मैं दोबारा पढ़ रहा हूं या तिबारा पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे तो जानता हूं, और जब ये भ्रम टूट जाएगा तो आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। दोस्तों इसे प्लीज करके देखिए अगर आपकी यह समस्या है तो। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सोमदत्त कुल्लू हिमाचल प्रदेश से, साहिल प्रताप, विजय कुमार पंजाब से, और जिज्ञासा मीना। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।